ओम शांति। आज भी बाप दादा अपना अमर वाणियों में गीता के भगवान मैं हूं, देवता कृष्ण नहीं है, बच्चे भक्तों को ये बात सिद्ध करके बोलो। बाबा ने हर एक हफ्ता में 3-4-5 मुरलियों में ये बात बारंबार हम बच्चों को बताया है, बता रहा है भी। अभी हम बच्चे अपना यज्ञ में प्लैटिनम जुबली भी बना दिया। बाबा का आशय ये मुख्य बात है, कृष्ण परमात्मा नहीं है, परमात्मा शिव है, ये बात सिद्ध कर। दूसरी बात है, भगवद गीता का भगवान मैं हूं ना कृष्ण है, बच्चे सिद्ध करके लोगों को बताओ। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बच्चे भक्तों को बताओ। ये मुख्य बात जोर से हम लोग भक्तों को फोर्स से हम लोग बोलना ही है, तब विश्व में भगवान एक है वो कौन है पता हो जाएंगे। साथ साथ भारतवासी जो भक्त है, विशेष विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, वो लोगों को भी रास्ता इससे मिल जाएंगे। इसी दृष्टिकोण से हम लोग बाबा का महावाक्यों को आगे रखकर कुछ पुरुषार्थ करना ही है। भाई बहनों को मेरा विनंती है, हम लोग भगवद्गीता माने डरने की बात नहीं, भगवद्गीता माने वो संस्कृत की है, वो तो पंडितों का है, विद्वानों का है, हमारे पास नहीं होता है, ये तो बिल्कुल हमारे पास नहीं होता है। भगवद्गीता माने संस्कृत की भाषा है, वो तो हम जानते ही नहीं है संस्कृत को, इसलिए हमें कैसे कर सकता है। ऐसे बात का बीती को हम लोग फर्स्ट छोड़ना चाहिए, ये मनों का बीती है, ये मन की बीती है, इसको छोड़ना है। दूसरी बात यह है, हर एक भारतीय भाषाओं में भगवद गीता अपना अपना स्टेट में ट्रांसलेशन कॉपी भी मिलता है, संस्कृत भी होता है, उसके साथ साथ तो अपना राज्य की भाषा में भी भगवद गीता मिलता है। इसलिए तो अपना स्टेट लैंग्वेज जाने वालों को भी ये बात इजी है। ऐसे नहीं चाहिए हम लोगों को पूरा भगवद गीता कंटेस्ट करें, सबको इस बात में पंडित बने, जरूरत भी नहीं है। तो बाबा हमको क्या डायरेक्शन दिया है वो इंपॉर्टेंट बात को हम लोग आगे रख के सोचे, उसको लोगों को सामने रखे निर्भीति से, धैर्य से। तो बाबा का काम बाबा कराता है, हम लोगों को नहीं है, बाबा कराने वाला बाबा है, हम बच्चे हैं, बाबा बोला हम करना ही है। अभी आपका सामने मैं कुछ चित्रों के द्वारा भगवद गीता को लेकर, रेफरेंस लेकर, ये चित्रों के द्वारा परमात्मा शिव ही भगवान है, परमात्मा ईश्वर ही भगवान है, वही गीता के भगवान है, वही कृष्ण का भगवान है। ये बात को हम लोग भक्तों को सामने रखने के लिए, विचारवादियों को सामने रखने के लिए, पंडितों को सामने रखने के लिए ये तैयार किया है। यह है चित्रमय ज्ञान है, इसमें चित्र के रूप से हम लोग ज्ञान देने का है। इसको संस्कृत के श्लोक को कंठस्थ करके बोलने कभी जरूरत नहीं है, सिर्फ चित्र को एक्सप्लेन करें बस अपना काम हो गया। भले जो चाहते हैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 9 श्लोकों को कंठस्थ करने से बहुत पंडितों के आप ज्ञान दे सकते हैं, ओनली 9 श्लोक, 10 भी नहीं, इतना बस। परमात्मा शिव ही विश्व के भगवान है, भगवद्गीता के भगवान है, कृष्ण का भी भगवान है। कृष्ण का परमात्मा यह है, ऐसे हम लोग इजी से कन्विंस सकता है। अभी महाभारत का सीन में आप तो जानते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध की स्थल में अर्जुन और कृष्ण का संवाद चलता है, तो इसको भी हमने अपने सामने रख के हम लोग ये स्टार्ट करना पड़ता है। जो पिक्चर आपका सामने है वो तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार से, शास्त्रों को भी लेकर उसका आधार से हम लोग इसको तैयार करना पड़ता है। तो हमारी मुख्य बात है शास्त्रों को रेस्पेक्ट दे, रेस्पेक्ट देकर उसी शास्त्र के आधार उसको शस्त्र चिकित्सा करें। शास्त्रों को आधार से ही वो लोगों को समझावे, इसी मेथड से बनाए हैं। तो क्योंकि अपना सामने बहुत डिफिकल्टी का एक बात है, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट बोलते हैं तो कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण परमात्मा नहीं है, ऐसे बोलने से भक्त को, भक्तों को हर्ट होता है। ये लोग हिंदू धर्म को ग्लानी करता है ऐसे वो लोग समझते हैं, तो इसलिए वो बात हम लोग छोड़ देंगे। कृष्ण परमात्मा नहीं है ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना, कृष्ण भगवान नहीं है ऐसे नहीं बोलना। आप तो समझ सकता है, अभी ये कंप्लीट लेसन होने के बाद आपको इजी मालूम होता है। तो कृष्ण को, स्वयं कृष्ण को जो अपना भागवत के अनुसार, महाभारत के अनुसार जो कृष्ण ने इसके लाइफ हिस्ट्री में जो किया है उसका आधार से यह सिद्ध होता है कृष्ण ईश्वर का भक्त है। वो तो कृष्ण स्वयं परमात्मा शिव जी का भक्त है, ऐसे ये कन्विंसिंग मेथड होता है, स्टोरी मेथड है। इसलिए ये तो कुरुक्षेत्र का सीन है आपका, अब जो पिक्चर देख रहे हैं ये नेक्स्ट पिक्चर है, एक भागवत की पिक्चर है। कृष्ण भागवत के अनुसार वो तो माता पिता का जन्म में, गर्भ में जन्म लिया। कृष्ण का पिता वसुदेव, माता देवकी होता है, तो वो तो जेल में, कारागृह में वो तो जन्म लिया। बाद में वो गुरु के पास सीखा, बाद में वो तो वृंदावन में तो बाल लीला दिखाया, बाद में अपना मामा कंस को वधा किया, बाद में सत्यभामा रुक्मिणी को शादी किया, फिर बाद में आप तो सारी स्टोरी जानते हैं। कुछ पिक्चर इसको दिखाया हूं, इसके कारण है वो भी देव मानव जैसे होके जन्म लिया है। भारत भागवत के अनुसार वो अपना भागवत पुराण बता रहा है। फिर बाद में एक दिन एक हंटर का तो बाण के द्वारा वो मरण भी किया। तो इसलिए मानव जैसे जन्म लिया, मानव जैसे जीवन हुआ, मानव जैसे मरण हुआ, तो ये सारी भागवत की कहानी है। इसलिए एक छोटा दृश्य है। हम सीधा भागवत से सीधा कुरुक्षेत्र में जाएंगे। कुरुक्षेत्र में रणरंग में तो सारे बातचीत तो कृष्ण अर्जुन को तो हो गया, समझिए। फिर अर्जुन कृष्ण को ऐसे प्रार्थना करता है, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। कृष्ण के सामने ऐसे प्रार्थना करता है, मना तुम्हें ही परमात्मा परम ब्रह्म है, पवित्र है, परम पुरुष है, शाश्वत है, जनन मरण से न्यारा है, ये सृष्टि को आदिदेव है, ऐसे कुछ महिमा करता है कृष्ण को। फिर बाद में फिर प्रार्थना करता है, कथम विद्या महाम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योस्मि भगवन मया। हे कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, मैंने सदा आपको ध्यान करने के लिए आपको मैं कौन सी रूप से जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको ध्यान कर सकूं, ऐसे प्रार्थना करता है। अर्जुन की प्रार्थना देखकर कृष्ण को मालूम हुआ ये मेरा भक्त हो गया है, वो तो इसको मेरा रियल नॉलेज नहीं है, ऐसे समझकर अपना रियल नॉलेज कृष्ण क्या है वो तो अर्जुन को बताता है। क्या बताया, हे अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतपा। ये नेक्स्ट एक श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो गए हैं, मैं सब जन्म को जानता हूं परंतु तुम्हें नहीं जानता है, ऐसे बोला। जो भगवान समझाता अर्जुन कृष्ण को, ये स्वीकार नहीं किया कृष्ण ने, इसको ज्ञान देने को ट्राई किया। तो मेरे को कितना जन्म हो गया है, तुमको कितना जन्म हो गया है, मैं सभी जानता हूं तुम्हें नहीं जानता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप जानता है दशावतार को, दशावतार में कुछ रेफरेंस हम लोग ले सकता है, कृष्णावतार, रामावतार, परशुरामावतार, सुबुद्धावतार, वामनावतार आप जानते हैं। तो ये अवतार, मानव अवतार जो है, मानव रूपी ये शरीर रूपी अवतार जो है, कृष्णावतार में कृष्ण का माता पिता वसुदेव और देवकी, रामावतार में उसका पिता दशरथ, माता कौशल्या है, परशुराम अवतार में उसका पिता जमदग्नि है, महर्षि, माता रेणुका देवी है, वामन अवतार में उसका पिता महर्षि कश्यप है, माता अदिति देवी है, बुद्धावतार में उसका पिता शुद्धोदन राय, माता माया देवी है। ऐसे जितना वो जन्म लिया है कृष्ण ने, वो तो जनन मरण चक्र में आ गया है,
भगवद्गीता में यही है, ये भी विचार है, जो जनन मरण चक्र में आता है वो तो भगवान नहीं होता है, ऐसा ऐसा लिखा है भगवद्गीता में। इसलिए खुद ही बोला, मैं और तुम्हें बहुत जन्म लिया है, जनन मरण चक्र में आया है, तुम नहीं जानता हो, मैं जानता हूं, इसलिए मैं भगवान नहीं हो सकता हूं क्योंकि मैं जनन मरण चक्र में हूं, साफ साफ बताया। इसके साथ साथ जब भी जो युद्ध की मैदान में है, फिर अर्जुन को सिखाया, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाह नचैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मना, मैं ऐसा नहीं कहेंगे, मैं सदा काल में नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तुम और ये सभी राजाए नहीं है। मना, ये सभी राजाए तुम और मैं पहले भी थे, अभी भी है, फिर आगे भी रहेंगे, परंतु हम लोग जीवात्मा है, हम लोग जनन मरण चक्र में फिर रहा है, ऐसे अत्यंत स्पष्ट कर दिया है भगवद्गीता में। तो खुद को परमात्मा नहीं है, ऐसे खुद कृष्ण जी ने बताया है, हम लोग जनन मरण चक्र में हैं, अर्जुन भी है, कृष्ण भी है, सारी राज महाराज आदि सब लोग जनन मरण चक्र में हैं, ऐसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाया। तो इसी उदाहरण लेकर, ज्यादा फोर्स देख के हम लोग नहीं बोलना, ये तो परमात्मा नहीं है, कृष्ण परमात्मा नहीं है, वो तो जनन मरण में आ गया है, ये पुरुषोत्तम देवता है, ऐसे बोलना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट भी देना चाहिए, उसको सिखाना भी चाहिए भक्तों को, ये तो पुरुषोत्तम है, देवता है, अर्जुन की फ्रेंड भी है, सखा भी है, रिलेटिव भी है, पांडवों का रिलेशन है, ऐसे हम लोग उसको भागवता और महाभारत के द्वारा हम लोग कुछ बोल सकता है धैर्य से, उसको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये बात भागवता में भी है, वो तो भगवद्गीता में भी है। साथ साथ कृष्ण जी दूसरा भी अर्जुन को ये बात बोला, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितो अर्हसि। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है वो तो मरण में आ जाएंगे, जो मरण लेता है वो तो जनन पुनर्जन्म में आ जाएंगे, वो जनन मरण जो चक्र है, पुनः पुनः मरण पुनः पुनः जन्म जो होता है, ये पुनः पुनः ही होता ही रहता है, इसको परिहार नहीं है, ये बात, ये सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको परिहार नहीं है। आत्मा माना जनन मरण चक्र में जीवात्मा होकर फिर आता ही है, इसलिए आप सोचो नहीं, ये स्पष्टीकरण कर दिया इसी श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अत्यंत स्पष्टीकरण कर दिया, जो भी जनन मरण चक्र में आता है वो तो उसको अनिवार्य जनन मरण चक्र है, अनिवार्य है, फिर वो जनन से मरण, मरण से जनन होता ही है, इसलिए डरने की बात नहीं है। ऐसे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया, आप जानते हैं बाबा ने वो क्या चीज है जनन मरण चक्र, कैसे हम लोग फिरते हैं जीवात्मा बन के, सब देवात्मा भी जीवात्मा बने, सभी हमें देवात्मा थे, अभी हमें पूजते, हमें पुजारी बन गया, कैसे हो गया, तो सारी सृष्टि चक्र के ज्ञान को आप जानते हैं, बाबा हम लोगों को सभी सिखा दिया है, वो ये चित्र में आप स्वस्तिक भी देख सकता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, सतयुग में देवता जो थे, द्वापर में जो आया, त्रेता में जो आया, द्वापर में जो आया, कलयुग में जो आया, संगमेगम है, किसका साथ है, बाबा का साथ है, और आप लोग सारी डिटेल जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा भगवद गीता का, महाभारत का, भागवत का स्टोरी भी ले लेंगे, उसको रेस्पेक्ट भी देंगे, उसका ही मुख से वो हमें जनन मन चक्र में हूं, सारी दुनिया के जीवात्मा से भी जनन मन चक्र में है ऐसे सिद्ध करके हमें इसी से बोलेंगे, नो कंडन है न मंडन है। जिसको न तिरस्कार करेंगे न पुरस्कार करेंगे, वो लोगों को बात को वो लोगों को सामने रख के बाबा का विचार को अत्यंत स्पष्टीकरण करने के लिए ये मुख्य बात है। बाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बात बताया, देखो तुम भी जन्ममन चक्र में है, मैं भी जन्ममन चक्र में है, सारी ये राजा महाराजा सारी प्रजा ये सभी जन्ममन चक्र में है, जीवात्मा देवात्मा बन के हम लोग फिर है। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। हे अर्जुन, सारी आत्माएं शरीर रूपी यंत्रों में प्रवेश करके जीवात्मा बनके अपना अपना कर्मानुसार जनन मरण चक्र में फिर रहा है, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलि ऐसे जनन मरण चक्र में फिर रहा है, परंतु ये जनन मरण चक्र में अपना अपना पाप पुण्यों के अनुसार तो फिराने वाला ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। ये सारी आत्माओं को जनन मरण चक्र में फिराने वाला है ना, वो ईश्वर है। स्वयं कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को, वो है ईश्वर, सबका मालिक वही है, वही जन्ममरण चक्र में सबको फिरा रहा है, अत्यंत स्पष्ट बता दिया। बाद में अर्जुन को ये बात सिखाया, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तुम्हें सर्व भावों से ईश्वर को शरण हो जाओ, ईश्वर के शरण में आ जाओ, तब वो ईश्वर आपको परम शांति और परम स्थान भी अनुग्रह कर सकता है। ऐसे स्पष्ट कर कहा कृष्ण जी ने, कहा अर्जुन को, वो ईश्वर जो है उसको आप सर्वभावों से शरण हो जाओ, तब वो ईश्वर आपको परम शांति भी देता है, परम स्थान माना परम धाम की जो मुक्ति प्राप्ति कर सकता है। ऐसे जो भगवान है वो ईश्वर है, वो सब कुछ देने वाला है, ये सब कुछ जीवराशियों को जन्ममरण चक्र में फिराने वाला है, सब कुछ शॉर्ट नटशेल में वो तो कृष्ण जी ने खुद बता दिया, वो ईश्वर ही परमात्मा है, अत्यंत स्पष्टीकरण कर दिया। हमें स्टोरी मेथड से बोल सकता है, आपका सामने मैं चार श्लोक बताया, अब बताने की भी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ स्टोरी, वो पिक्चर देखना, वो स्टोरी बोलते रहना, तो पिक्चर में श्लोक भी है, वो अध्याय भी है, श्लोक का नंबर भी है, भले जो भी शास्त्रवादी चाहिए तो पढ़े, आपका जरूरत नहीं है श्लोक बोलने के लिए, श्लोक का सिखाने के लिए, परंतु आप थोड़ा कोशिश करने से या श्लोक को कंटेस्ट करने से आपको फिर भी इजी हो जाएंगे, आप मास्टर समझ के बोल सकता है, इसमें भी डरने का बात नहीं, इजी है, मोस्ट इजी है। ये चित्र में बताया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, ओ ईश्वर को तुम्हें शरण हो जाओ, वो ईश्वर को देखो, उधर पिक्चर भी दिखाया ईश्वर को, थोड़ा स्पेशल मेथड बनाया है, ये टीचिंग मेथड बनाया है इसमें, तो जो जानता है ईश्वर को निराकार रूप से ज्योति रूप से उसको दिखा के, तो इजी कन्विंसिंग करने के लिए वो चित्र नया ढंग से बनाया है, वो तो इजी से इसको आप लोग एक्सप्लेन भी कर सकता है। फिर बाद में तो भगवद गीता के रेफरेंस लेकर हम लोग ये भी बोल सकता है, आप जानते हैं आत्मा और परमात्मा का पिक्चर, ऊपर परमात्मा है, नीचे त्रिमूर्ति है, सभी देवता है, फिर धर्म 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 धर्मों वाले आत्मा है, वो सभी है ये पिक्चर में। ज्योति शामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विस्तृतम। अर्जुन को कृष्ण ने सिखाया, देखो ये परमात्मा ये है, वो परम ज्योति है, आत्म ज्योतियों के ऊपर ये ज्योति है, वो परम ज्योति है, वो ज्ञान ज्योति है, वो तो सब अज्ञान को मिटाने वाला ज्योति है। वो ज्योति को समझने के लिए, जानने के लिए, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, आप तो ज्ञान मार्ग से ही उसको जानना पड़ता है, ज्ञान मार्ग के द्वारा ही उसके पास जाना पड़ता है, तो जानना तो मानना, उसका पास जाना, वो ज्ञान के बिना दूसरा है ये नहीं मार्ग। ऐसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाया, आत्मा और परमात्मा को भी सिखाया। तो आत्मा और परमात्मा का सिखाने के साथ साथ ये भी कुछ बातें बताया, न तद्वा सयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परम मम। वो ईश्वर ने जो कहा है वो बात को श्री कृष्ण जी ने फिर बोला, जो आत्मा है वो परमात्मा है, सभी परमधाम निवासी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमधाम निवासी है, ये तो भगवद गीता में है। तो इसलिए जो भक्तों का मन में भ्रांत है, तो परमात्मा जग जगह में है, कण कण में है, तृण तृण में है, ऐसे वो भ्रांत को निकालने के लिए इसी से एक श्लोक के द्वारा हम लोग ये तीनों लोगों को परिचय दे सकता है। सूर्यलोक के ऊपर, चंद्रलोक के ऊपर जानना चाहिए, बाद में जाने से न तद्भव सहते सूर्यो न शशांको न पावकः, जहां सूर्य की चांद की नक्षत्र की जो रोशनी भी नहीं पहुंच सकता है वो ऊपर वो परमात्मा है। यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वो भगवान उधर है, परमधाम निवासी हो के उधर है, वो तो कण कण में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, हम भी उधर थे, भगवान भी उधर है, हम उधर से आए हैं धरणी पर, ऐसे हम लोग अपना ज्ञान को इजी से समझा सकता है, नो कॉन्ट्रोवर्सी। तो पिक्चर भी ऐसे ही, उसकी श्लोक का आधार भी ऐसे है। बाद में आप आत्मा और परमात्मा का सिखाने के बाद में देखिए, आत्मा और परमात्मा तो पिक्चर इधर है, आप देखा है, तो जीवात्मा परमात्मा, पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा धर्मात्मा देवात्मा, तो इसके साथ परमात्मा ज्योतिर्लिंग रूप से उधर है, तो कॉन्ट्रास्ट भी हम लोग डीप से बोल सकते हैं, आत्मा परमात्मा जीवात्मा परमात्मा, ये सारे पिक्चर को जितना चाहे उतना एक्सप्लेन कर सकता है आपके शब्दों के द्वारा, अनुभव के अथॉरिटी के द्वारा। बाद में परमधाम को भी हम लोग बोल सकता है, परमधाम के बोलने के बाद फिर हम लोग भक्ति लोक में आ जाएंगे। भक्ति लोक में आने से ये पिक्चर आपको मालूम है, शंकर जी देवता शंकर जी तपस्या करता है, तपस्या करता है मना तो तपस स्वीकार करने वाला ऊपर एक होता है, वो भगवान है, वो भगवान को शंकर जी ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ये मंत्र के द्वारा, ये पंचाक्षरी मंत्र षडक्षरी मंत्र के द्वारा जप करता है, अजप जप करता है, भले पुराण के अनुसार से हम बतावे उसको, तो हम बोलने का जो जरूर है विचार उसको पुराण को आधार से बतावे, वो तो शंकर है, वो तो देवता है, उसको ऊपर भगवान है, परमात्मा शिव है, वो परमात्मा को याद करके बैठा है। तो फिर नीचे पिक्चर में आएंगे, उधर शंकर गौरी गणेश वो तो ये फैमिली होल्डर है, इसी से बोलना, आप डरना नहीं है, शंकर जी फैमिली होल्डर है, वो तो दो पत्नियां हैं उसका, तीन बच्चे हैं, वो तपस्वी है, योगी है, देवता है, वो परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है, परम ज्योतिष स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो ज्ञानेश्वर है, जनन मन चक्र से न्यारा है, शरीरदारी नहीं है, अजन्म है, अयोनिज है, अव्यक्त है, अभोक्त है, अहिंसक है। आपके शब्द भंडारों में जो भी बाबा का महिमा है वो तो आप तो गुणगान कर सकता है, वो परमात्मा को शंकर जी याद कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा सुप्रीम है, तो देवात्मा शंकर जी उसको ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है। तो इसलिए शिव जी अलग है परमात्मा, शंकर देवता अलग है। ये इजी से पुराण के द्वारा हम लोग ये भी बात को सिद्ध कर सकता है। ये बात सिद्ध करने का इधर जरूरत है, क्योंकि हम लोग आगे टारगेट है कृष्ण को, तो इसलिए पहले इसको सिद्ध करें, फिर इजी से नेक्स्ट नेक्स्ट सिद्ध हो जाएंगे, खुद ही इजी हो जाएंगे। हमारे मुख से ये कृष्ण देवता ने परमात्मा है, राम परमात्मा है, इसे बोलने की जरूरत नहीं, वो तो लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्या परमात्मा माना क्या है, क्या है वो रूप, क्या है नाम, क्या है धाम, क्या है, वो तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग शास्त्र के द्वारा पुराण के द्वारा हम लोग इजी से समझा सकता है। वो तो बाद में वो विष्णु भी परमात्मा को पूजा किया है, शिव जी को पूजा किया है। विष्णु पुराण में यह बात अत्यंत स्पष्ट है, पुराण में कथा है, वो कथा अभी बताने के लिए समय नहीं होने के कारण शॉर्ट से हम लोग आपके सामने रखेंगे। वो तो विष्णु का चक्र जो थे सुदर्शन चक्र, उसको जो राक्षसों को हत्या करने के लिए वो यूज करता था विष्णु, दधीचि महर्षि ने इसको खत्म कर दिया, विष्णु को चक्र को लेके इसे क्रश कर दिया, तो विष्णु का चक्र नहीं हो गया, फिर उसका पावर चले गया। तब श्री महाविष्णु ने ईश्वर को सहस्र कमल से पूजा करता है, ये पुराण में है। सहस्र कमल से पूजा करने के समय में एक कमल कम हो जाता है, इसलिए अपना आंख को लेकर शिवलिंग के ऊपर पुष्प के बदले इसको अर्पित करता है। फिर बाद में ईश्वर ने इसको प्रत्यक्ष होकर उसको चक्र फिर स्वर्ण चक्र को देता है, ऐसे स्टोरी है। तो इसलिए श्री महाविष्णु भी परम ज्योतिष स्वरूप परमात्मा शिव जी को भक्त है। वो थोड़ा नीचे आइए, देखिए उधर दोनों कॉन्ट्रास्ट है, परमात्मा शिव और विष्णु। विष्णु भी क्षीर सागर में समझो तो पत्नी के साथ है, पत्नी पाव को दबा रहा है, तो वो भी विष्णु भी महाविष्णु भी उसको दो पत्नियां हैं, वो तो श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी माने लक्ष्मी, लक्ष्मी तो कृष्ण का सॉरी विष्णु का पाद सेवा कर रहा है। तो आप फिर भगवान ना विष्णु होता है, भगवान भी विष्णु भी भगवान परमात्मा का भक्त हो गया, जैसे शंकर भी परमात्मा का भक्त हो गया, ऐसे विष्णु भी परमात्मा का भक्त हो गया, ये पुराण के आधार से होता है। ये तीसरी नेक्स्ट पिक्चर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा भी बोला है, कल भी बोला, आज भी बोला। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा भी शिव बाबा को परमात्मा को याद करते हैं, ज्योतिष स्वरूप को याद करता है। तो ब्रह्मा भी तो दो पत्नियों को शादी किया है, वो तो एक सावित्री एक गायत्री, तो इसलिए वो भी फैमिली होल्डर है। विष्णु भी फैमिली होल्डर है, ब्रह्मा भी फैमिली होल्डर है, शंकर भी फैमिली होल्डर है, परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है, वो एक ही परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है, वो तो परमात्मा शिव जी है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचयिता है, तो इजी है, न खंडन है न मंडन है, तिरस्कार नहीं है। भारतीय जो भी शास्त्र को हम लोग प्रेस करके ईश्वरीय ज्ञान को भी दे सकता है। तो यह है कृष्ण जी। अभी परमात्मा के बारे में आप लोग सिखा दिया आप, तो आत्मा और परमात्मा, परमात्मा परमधाम निवासी, जीवात्मा परमात्मा का डिफरेंस आप तो दिखा दिया, सिखा दिया पिक्चर के द्वारा। तो पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा सभी सिखाया, डिफरेंस सिखाया, परमात्मा ऊपर है सिखाया। अभी ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है परमात्मा, वो भी सिखा दिया। अभी श्री कृष्ण का फिर श्री कृष्ण के पास आ गया, देखो श्री कृष्ण का अष्टपत्नी है, 8 पत्नियां हैं उसका, 8 पत्नियां हैं। सो सिर्फ 8 नहीं, आप समझते हैं उसको 16108, वो बाद में समझो। तो मिनिमम 8 पत्नियां तो भागवत के अनुसार आई ही, भागवत के अनुसार वो 16108 पत्नियां भी हैं। तो परंतु ये भी फैमिली होल्डर है, जैसे विष्णु भी फैमिली होल्डर है, वो शंकर भी फैमिली होल्डर, ब्रह्मा भी, ये भी फैमिली होल्डर है, परंतु इसका फैमिली बहुत बड़ा है, 16108। ये कृष्ण भी परमात्मा शिव को, कृष्ण का जन्म में, राम का जन्म में, कृष्ण का जन्म में, परशुराम का जन्म में, ऐसे अनेक जन्म में कैसे कैसे पूजा किया, ये आप लोग जान सकते हैं। आप कुरुक्षेत्र में जाने से, कुरुक्षेत्र में एक ब्रह्म महासरोवर, ऐसे एक सरोवर है ब्रह्म महासरोवर, और सरोवर के बीच में एक शिवलिंग है, ईश्वर का टेम्पल है, सर्वेश्वर महादेव ऐसे टेम्पल है, उधर बोर्ड लिखा है, वो बोर्ड में ये वो उधर स्थल पुराण में लिखा है, वो तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों कुरुक्षेत्र युद्ध में जाने के पहले वो स्थल में आए थे। तो ये ब्रह्म महासरोवर में स्नान करके, सर्वेश्वर महादेव ईश्वर को पूजा करके, प्रार्थना करके युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए फिर गया कुरुक्षेत्र में, ऐसे लिखा है। तो ये एविडेंस है। तो श्री कृष्ण जी ईश्वर का भक्त है, श्री कृष्ण जी ईश्वर का परम भक्त है, श्री कृष्ण जी ईश्वर का ध्यान करता है, योग करता है, तपस्या करता है, इसलिए परमात्मा शिव जी परमात्मा होता है, ज्योति स्वरूप होता है, तो कृष्ण जी उसका भक्त है। बाद में ये पिक्चर आप उत्तरांचल में, यूपी के फिर नॉर्थ साइड जाने से उत्तरांचल मिलता है, वो उत्तरांचल में एक टेंपल है, ये टेंपल का नाम है गोपेश्वर। ये गोपेश्वर अभी अभी टेंपल बना है, जब भी वो पुराण में समय में था, स्टार्टिंग के किसी नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण ने एक ईश्वर लिंग को प्रतिष्ठापना किया, प्रतिष्ठापना करके उसको गोपेश्वर ऐसे नाम भी रखा। वो स्थल भी गोपेश्वर है, ये टेंपल भी ईश्वर का है, वो तो वो टेंपल का ईश्वर का नाम भी गोपेश्वर है। ये क्यों ईश्वर का ये स्थापना किया, ईश्वर लिंग को स्थापना किया, ये ज्योतिर्लिंग को स्थापना किया, इसका रहस्य यह है, श्री कृष्ण जी ने अपना मामा कंस को वधा किया, उसका जो भी है दंतवक्र शिशुपाल ऐसे जो भी है उसको वधा किया। सो वो नरहत्य जो किया उसको पाप परिहारार्थ, वो तो एक ईश्वर लिंग को उधर स्थापना करके अपना पाप विमोचन करने के लिए वो स्वयं श्री कृष्ण जी ने ईश्वर को पूजा किया, ज्योतिर्लिंग को पूजा किया। तो ये स्थल पुराण है, तो इसलिए परमात्मा शिव है, ज्योतिर्लिंग है, सो श्री कृष्ण जी ईश्वर का भक्त है। फिर ये पिक्चर दूसरा है, वो तो श्री कृष्ण जी को अष्टपत्नियां हैं, आप जानते हैं, ये लास्ट पत्नी जो है उसको नाम है जाम्भवी। ये जाम्भवी को पुत्र संतान नहीं हुआ, तो इसलिए वो तो जाम्भवी शोक में उपस्थित हो गया। इस अपुत्र से गतिर्नास्ति, अपने हिंदू धर्म में ये पॉइंट है, ये विचार है, जिसको पुत्र संतान नहीं उसको मुक्ति नहीं होता है, इसलिए वो कृष्ण को, कृष्ण के सामने रोने लगा। तो मेरे को पुत्र संतान नहीं है, मेरे को दुर्गति हो जाता है, मेरे को सदगति नहीं मिलता है, मेरे को मुक्ति नहीं मिलता है। फिर बाद में कृष्ण को परेशान हुआ, कृष्ण जी ने हिमालय में जाके कृष्ण जी ने ईश्वरलिंग को, परंज्योति स्वरूप परमात्मा को याद किया, तपस्या किया, तो ईश्वर से वर प्राप्त किया। तो बाद में उसको जाम्बवी को पुत्र संतान हुआ, उसका नाम है वो सांबा। तो ये तो भागवत में स्पष्टीकरण है। तो रामकृष्ण आश्रम मैसूर, वो मैसूर रामकृष्ण आश्रम वाला एक वायव्य संहिता, इसे एक पुराण प्रिंट किया है, वो पुराण में सारी ये लिखत की बात है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं हिमालय पर में जाके तपस्या करके ईश्वर से वर मांगा, वो वर से जाम्बवी को पुत्र संतान हुआ, ऐसे उसको अत्यंत स्पष्टीकरण एविडेंस है अपना पुराण में। इसलिए इधर भी हम लोग परमात्मा शिव है, ज्योति स्वरूप है, कृष्ण भक्त है, ऐसे हम लोग सिखा दिया, पिक्चर के द्वारा दिखा दिया। अब फिर आइए तो कृष्ण के तो परमात्मा ईश्वर का भक्त है, आप तो विथ द रेफरेंसेस, पुराण के रेफरेंसेस, भागवत के रेफरेंसेस, तल पुराण के रेफरेंस से बता दिया, फिर बाद में यह सिखाना चाहिए तो श्री कृष्ण जी का पूर्व जन्म क्या था, रामावतार, राम की जन्म था। राम में राम भी, श्री राम भी, श्री आत्मा जो है श्री राम, वो नेक्स्ट जन्म कृष्ण था, पिछले जन्म में राम है, वही आत्मा है, वही आत्मा रामावतार में भी श्री कृष्ण, जैसे श्री कृष्ण पूजा करता है वैसे राम भी पूजा किया। सो शिव जी को आप तो जानते हैं, तो जब वनवास समय में अरण्य में जब गया, वो तो अगस्त्य महर्षि के आश्रम में गया राम जी। उसी समय में रावण ने सीता को किडनैप कर दिया, तो वो तो शोकाग्रस्त हो गया, चिंताक्रांत हो गया वो तो राम जी। तो अगस्त्य महर्षि के पास गया, वो तो बोला तो मैं तो रावण के युद्ध, रावण के ऊपर युद्ध करना चाहिए, इसलिए मेरे को आशीर्वाद करो। तो अगस्त्य महर्षि ने बोला आप तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि रावण महाशिव भक्त है, वो तो महा तपस्वी है, वो तो ईश्वर से वर प्राप्त कर दिया है, वो तो अजय व्रत प्राप्त, अजय व्रत वर प्राप्त कर दिया है, तुम्हें तो उसका सामने तो विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे तो बोल दिया। बाद में उसको क्या करना, इसलिए वो एक इमीडिएट ईश्वर को आप तपस्या करो, पूजा करो, व्रत करो, ईश्वर को फिर साक्षात्कार करके उसके द्वारा आप सॉल्वेशन मांगो, ऐसे तो महर्षि अगस्त्य ने उसको सिखाया, ऐसे पुराण में रामायण में है। तो बाद में वो तो उसको नंदाव्रत, मिरज व्रत बोलते हैं इसमें, वो तो व्रत किया, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, ईश्वर के साथ साथ वो बात किया। बाद में ये ईश्वर ने बताया उसको, देखो मैं तो, मेरे पास अत्यंत मुख्य वर है अजय व्रत वर, वो तो उसको दे दिया हूं, फिर हमारे पास है ये नहीं अभी, तो इसलिए आप एक काम करो, रावण का पास तुम्हें जाओ सुबह सुबह, वो तो संध्यावन करता है, उसके सामने जाके आप उसको शरण हो जाओ, रावण, रावण को, वो तो उसी समय में महाब्राह्मण के रूप में होता है रावण, जब सुबह सुबह ईश्वर का तपस्या करता है वो संध्या वंदन करता है। तो बाद में आप उसको ये पूछो, मैं तो रावण को, रावण के अगेंस्ट में मैं वार करने को आया हूं, इसलिए आप महाब्राह्मण है, मेरे को कंकण बांधो, विजय कंकण बांधो, तो स्वयं रावण को आप पूछो। तो उसी समय में रावण इमीडिएट आपको ऐसे कंकण बांधेंगे, रावण के ऊपर आपको विजय हो जाएंगे, ऐसे आशीर्वाद भी करेंगे, तब आप युद्ध करके आप विजय प्राप्त कर, ऐसे पुराण में है रामायण में, वो भी बता दिया। इसलिए तो उसी समय में राम शिव जी को पूजा किया, तपस्या किया, वर लिया। नेक्स्ट आप जानते हैं रावण को वधा किया, बाद में रामेश्वर लिंग को स्थापना किया, क्योंकि महाशिव भक्त महायोगी, तो रावण को, महाब्राह्मण है रावण, उसको हत किया ना, तो इसलिए उसके पाप को निवारण करने के लिए सो रामेश्वर में सो राम जी भी फिर शिवलिंग को स्थापना करके, तो पूजा करके, तो शिव की भक्त हो गया। कृष्णावतार में भी परमात्मा शिव जी का भक्त है, रामावतार में भी शिव जी का भक्त है, वही आत्मा। तो ये दशरथ महाराज, दशरथ भी शिव जी का भक्त है, उसको वो शिव नहीं बोलता है, राम बोलता है उसको, वो लिंग को रामेश्वर बोलता है। तो जो रामेश्वर लिंग स्थापन किया वो तो राम, श्री राम जी। उसके पहले भी वो दशरथ ने अपने बच्चे को तो राम क्यों रखा, नाम राम नाम रखा, वो नाम है ईश्वर का, राम मन निराकार राम। श्री दशरथ राम, दशरथ जी का पुत्र राम है कोदंड राम, ये राम है निराकार राम, वो तो इसको भी वो लोग पूजा किया। दूसरा रामावतार का पहले फिर परशुराम अवतार, परशुराम अवतार आप जानते हैं, परशुराम अवतार जमदग्नि उसका पिता है, रेणुका देवी उसका माता है, तो उसका स्टोरी तो थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए वो पिता के आग्न को फॉलो करके माता का शिरश्छेदन कर दिया परशुराम अवतार में। फिर जमदग्नि ऋषि ने उसको वर दिया, जो भी पूछना चाहिए पूछो। फिर माता को वो प्राण दिया अपने जगह जो भी वर से, वो तो एक स्टोरी है। तो उसी समय में भी ये स्टोरी ये है, तो पितृ आज्ञा पालना करना, मातृ आज्ञा पालना करना हमारी संस्कृति है ना। इसलिए उसी समय में भी कृष्णावतार रामावतार परशुराम अवतार में भी वो तो वही आत्मा तो परमात्मा शिव जी को पूजा किया, परमात्मा शिव जी से तो वर मांगा। तो ऐसे हम लोग सिद्ध करके 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 फिर तो अपना कलयुग में आ जाएंगे। सो केरला में नारायण गुरु एक ही भगवान है, हम सभी उसका भक्त है, वो जाति धर्म अनेक ये नहीं है इसे बोला। शिवाजी महाराज वो भी ईश्वर का पूजा किया, वो एक ही परमात्मा का है। सो अपना कबीर दास वो भी ईश्वर का तो बोला है, एक ही परमात्मा है ऐसे। तो उडुपी क्षेत्र है कर्नाटक में, वो जो मध्वाचार्य है वो तो महाकृष्ण भक्त है, वो कृष्ण भक्त होने के पहले वो भी महाशिव भक्त है, उसका फैमिली शिव भक्त है। वो तो पांच वेद बोला है, जीव जीव वेद, जड़ जड़ वेद, जीव जड़ वेद, ईश्वर जीव वेद, ईश्वर जड़ वेद। वैसे जो अपना ज्ञान है उसको 90% तक हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं उसके द्वारा, वो तो एक्सेप्ट कर दिया है। तो जो मध्वाचार्य जी है, जो विष्णु भक्त है, वो कृष्ण भक्त है, वो राम भक्त है, वो फर्स्ट रूप से ही अपना थीसिस में द्वैता फिलॉसफी में वो सिद्ध कर दिया, ईश्वर ही परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं हो सकता है। आप जानते हैं ये लॉस्ट का पिक्चर नीचे देखना, वो तो आरएसएस वाला, आरएसएस वाला भी जो पूछा, जो ध्यान करता है बैठक करता है उसी समय में परमात्मा निराकार है ज्योतिष स्वरूप है, ऐसे उसके पास श्लोक भी है। तो जो अपना टेम्पल में वो हम लोग ये भी परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है ऐसे हम लोग पूजा करता है ज्योतिर्लिंग रूप से, ऐसे सिख लोग भी परमात्मा को याद करता है। दूसरा है वो तो साउथ में एक भक्त बसवर्णा, तो वो भी परमात्मा देव ये गॉड एक है, महिमा अनेक ऐसे बोला। तो दूसरा विवेकानंद है, वो तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गॉड इज वन ऐसे अपना लेक्चर्स में दिया है। वो तो अपना महात्मा गांधी ईश्वर अल्लाह एक है बोल दिया। तो अपना साईं बाबा बोला सबका मालिक एक है, ये सभी जो बोलता है तो एकेश्वर है, ज्योतिर्लिंग है परमात्मा, ज्योतिष स्वरूप है, पर ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए ऐसे बताया है। इसलिए ये भी मार्ग से हम लोगों का रास्ता बहुत ईजी है, परमात्मा एक है। तो सभी शंकर विष्णु ब्रह्मा रामा कृष्णा सो भी देव जो भी देवता गण है सब भक्त है, परमात्मा एक है, ऐसे हम लोग भक्तों के सामने ईजी से शास्त्र को आधार से हम लोग रखा। इसलिए तो जो बाबा का एक मुख्य बात है, परमात्मा कृष्ण नहीं है, मैं ईश्वर है परमात्मा, इसको बच्चे सिखाओ। ये बात को हम लोग इसी से स्टोरी के द्वारा हम लोग सिखा सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी अपना टीचर बहन है इसको थोड़ा सीख के, अपना एग्जीबिशन सेट भी है तो हम लोग आप लोगों को सीडी भी दे देंगे, आप लोग फ्लेक्स के द्वारा एग्जीबिशन सेट बना के अपना अपना क्षेत्र में ये बात को सिद्ध कर सकता है, नो कंट्रोवर्सी। तो संस्कृत पढ़ने को भी जरूरत नहीं है, ये पिक्चर है, ये स्टोरी है, या बोल सकता है। अच्छा, मेरे को एक संकल्प आया है, जो भी कर्नाटक वाला है आंध्र वाला है जो भी भाई बहनों को, तो एक स्पेशल ट्रेनिंग भी देने के लिए भगवद्गीता के ऊपर तो विचार है। तो मैं मैगजीन में भी डाला है, कुछ लोग मेरे को रेस्पॉन्ड दिया है, जो भी इच्छा है मेरे को अपना एड्रेस मोबाइल के नंबर देने से मैं वो लोगों को स्पेशल इन्विटेशन देता हूँ, वो लोगों को स्पेशल स्टडी करा के वो तो वो लोगों को तैयार करने के लिए मेरे को बाबा ने प्रेरणा दिया है। तो बड़े उनसे परमिशन लेके अपना ब्रिजमोहन भाई जी तो आप जानते हैं, वो स्पेशल बाबा ने उसको आगे रखा है भगवद्गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए, वो भाई जी का आशीर्वाद लेके। तो आप भाई जी को भी इन्वाइट करके, आपका उधर इन्वाइट करके 3 दिन की एक शिविर करेंगे। ओम शांति।
मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। परमात्मा